हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगले दिन सुबह के करीब 4 बज रहे थे जब धृति के कानों में अर्णव की आवाज़ पड़ी जिसने उसकी नींद में खलल पैदा कर दिया। धृति, वेक अप! धृति उठो, हमें कहीं जाना है, देर हो जाएगी। धृति, अब उठ भी जाओ, बाद में वापस सो जाना। लगातार कानों में पड़ती आवाज़ और अर्णव के स्पर्श को महसूस करते हुए वो नींद से बेजार हुई। नींद शायद अभी पूरी नहीं हुई थी उसकी। नींद से भरी अत खुली गुलाबी आंखों से उसने अर्णव को देखा और अलसाई हुई सी बोली, इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? मुझे अभी और नींद आ रही है। बाद में वापस सो जाना स्वीटहार्ट, अभी उठ जाओ वरना लेट हो जाएंगे और वो खूबसूरत नज़ारा मिस कर देंगे जो मैं तुम्हारे साथ देखना चाहता हूँ। अर्णव ने बेहद मोहब्बत से उसके गाल को सहलाया। धृति ने नींद को खुद से दूर झटका और उठकर बैठ गई। नज़र सीधे घड़ी पर गई और इसके साथ ही वो बुरी तरह से चौंक गई। अभी तो बस 4 ही बजे हैं, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया? धृति की हैरानी से फटी आंखें अर्णव की ओर घूम गईं। ध्यान उसकी स्याह आंखों पर गया जिनमें हल्का गुलाबीपन नुमाया था। ये देखकर वो एक बार फिर चौंक गई, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही अर्णव का जवाब आ गया, हमें कहीं बाहर जाना है, आधे घंटे का वक्त है तुम्हारे पास, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, फिर निकलना है हमें। अर्णव का जवाब सुनकर धृति पल भर को उसे तकती रही, फिर चिंतित स्वर में सवाल किया, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या? नहीं, बहुत अच्छी नींद आई, अब तुम जाकर जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। अर्णव ने सहजता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पर धृति उसके सफ़ेद झूठ को पकड़ चुकी थी। उसने उलझन भरी नज़रों से उसे देखते हुए सर हिलाया और चेंजिंग रूम की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। पूरे घर में इस वक्त गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। परिवार वालों से लेकर घर के नौकर चाकर तक सब सुबह के इस पहर में गहरी नींद में खोए थे। ड्राइंग रूम में लगे झूमर की झिलमिलाती हल्की सुनहरी रोशनी चारों ओर बिखरी हुई थी। उस सन्नाटे में उनके कदमों की आवाज़ें गूंज रही थीं और धृति का हाथ थामे अर्णव बिना किसी को खबर किए बाहर की ओर निकल गया था। सारे रास्ते कार में गहरा सन्नाटा पसरा रहा। रात का अंधेरा अभी छटा नहीं था। आकाश में अब भी चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था। सड़कें लगभग सुनसान थीं। धृति विंडो से टेक लगाए लगातार बाहर देख रही थी और जाने किन्हीं ख्यालों में खोई थी, जबकि अर्णव का ध्यान जितना सामने था उतना ही धृति पर भी था। कार बीच पर जाकर रुकी और इसके साथ ही धृति की तंद्रा भी टूटी। उसने चौंकते हुए आसपास निगाहें घुमाई, फिर हैरान परेशान निगाहों से अर्णव को देखने लगी जो अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर निकल रहा था। अर्णव ने उसकी ओर का दरवाज़ा खोलकर अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई, जिसे धृति ने थोड़ा सकुचाते हुए थाम लिया। दोनों बीच पर पहुँचे। सुबह के इस पहर में वहाँ की सभी स्टॉल्स बंद थीं। इक्का दुक्का ही लोग नज़र आ रहे थे। अंधेरा कुछ छटने लगा था। दूर तक फैला अथाह समुद्र चांद सितारों की चादर ओढ़े अलसाया सा बैठा था। रात की खुमारी अभी उतरी नहीं, पर लगातार बहती वो चंचल लहरें उसे झिंझोड़ रही थीं। आकाश में मौजूद चांद अब दूसरा ठिकाना ढूंढने की फिराक में था और सूरज बादलों की ओर से बाहर आने को मचल उठा था, पर सूर्योदय में अभी कुछ वक्त था। अर्णव ने शूज उतारे तो धृति ने भी अपनी सैंडल उतार दी। अर्णव उसका हाथ थामे समुद्र की ओर बढ़ गया। वो चंचल लहरें उनके पैरों को भिगोकर खिलखिलाने लगीं, जिसकी मधुर आवाज़ फिजाओं में गूंज उठी थी। ठंडी हवाएं उन्हें छूकर गुजर रही थीं और मन तरोताज़ा कर रही थीं। उन शीतल बूंदों का स्पर्श मन को ठंडक प्रदान कर रहा था। रात के अंधकार और सुबह के उजियारे का ये अद्भुत संगम लुभावना था। बहुत ही शांत और मनभावन वातावरण था जो दिल को सुकून पहुँचा रहा था। कुछ देर तक धृति की हथेरी थामे उन लहरों पर खामोशी से चलते हुए अर्णव इस खूबसूरत नज़ारे और धृति के साथ होने का महसूस करता रहा। फिर उसने खामोशी तोड़ते हुए कहना शुरू किया, पता है धृति, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पर कहने की हिम्मत नहीं कर पाता। तुमसे कितनी ही बार अपने गुनाहों की माफ़ी मांग चुका हूँ पर खुद को आज तक माफ़ नहीं कर सका। मैं जानता हूँ, जब से मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में कदम रखा है तुम्हारे हर दर्द और तकलीफ़ की वजह मैं बना हूँ। अपने गुस्से और नफ़रत में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, जिसका एहसास भी है मुझे, पर इस दौरान जब मैं अपनी नफ़रत निभा रहा था और मोहब्बत को समझने की कोशिश कर रहा था, तुमने मेरे बुरे व्यवहार के बावजूद बहुत कुछ किया है मेरे लिए, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। तुम बहुत अच्छी हो धृति, मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं। तुम मुझसे बेहतर लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हो, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल बनने की पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश करूँगा कि इन दूरियों की सज़ा भुगतने के बाद जब मैं तुमसे दोबारा मिलूँ तो वो बनकर मिलूँ जिसे तुम बेहिचक अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सको। पूरी कोशिश करूँगा खुद को वैसा बनाने कि जैसे जीवन साथी की ख्वाहिश तुम्हें थी, ताकि तब तुम मुझे और मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट कर सको। ध्रुति, जो बस इस खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा रही थी, महसूस कर रही थी इस लम्हे में समाये सुकून को। अर्नव की बात उसने बहुत ही ध्यान से सुनी और उन अल्फाजों में घुली भावनाओं को महसूस भी किया। फिर नजरें उसकी ओर घुमाते हुए भावहीन सी बोली, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा मेरी जिंदगी में आएं। इतनी नफरत करती हो मुझसे? अर्नव ने उसकी सूनी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, जिस पर ध्रुति ने इनकार में सर हिला दिया। नहीं, नफरत तो नहीं करती आपसे। आप इतने भी बुरे नहीं हैं, जानती हूँ। आपने अपने गुस्से और नफरत के बाद भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है मेरे लिए, पर फिर भी मैं आपको वापस अपनी जिंदगी में कभी शामिल नहीं करना चाहती। क्यों? क्या मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि मुझे कभी तुम्हारी माफ़ी और तुम्हारे दिल व जिंदगी में थोड़ी सी जगह नहीं मिल सकती? अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करती तो क्या नाराज़गी है जो इतनी बढ़ चुकी है कि कभी ख़त्म नहीं होगी? यही समझ लीजिए कि नाराज़गी ही है, आपसे, खुद से, अपनी किस्मत से, जो शायद कभी ख़त्म नहीं होगी। ध्रुति की उदासी के समुद्र में डूबी धीमी सी आवाज़ आई और निगाहें समुद्र की ओर घूम गईं। ऊपर से कितना शांत था वो, पर उसके भीतर एक तूफान छुपा था और भावनाओं का एक ऐसा ही तूफान उसके मन में भी उठ रहा था। अर्नव कुछ पल उसके चेहरे के भावों को गहराई से ऑब्जर्व करता रहा, फिर संजीदगी से बोला, ध्रुति, मोहब्बत हर नफरत और नाराज़गी को मिटाकर अपना वजूद ढूंढ ही लेती है। मुझे ही देख लो, जब तुमसे पहली बार मिला था तो तुमसे बेइंतहा नफरत करता था, इसके बावजूद तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा, जिसका एहसास मुझे ज़रा देर से हुआ। ये मेरा खुद का तजुर्बा है कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसके आगे हर नफरत और नाराज़गी हारती है, और सच्ची मोहब्बत से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। मैं भी तुम्हारी नाराज़गी को दूर करके तुम्हें अपना बना लूँगा, ये मेरा विश्वास है। आपका ये विश्वास टूटेगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपसे दूर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। वापस लौटने का मेरा कोई इरादा नहीं, इसलिए खुद को कोई झूठी उम्मीद मत दीजिए। ध्रुति कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रही थी। उसने जितने विश्वास से ये बात कही, अर्नव पल भर को निराशा से घिरे उसे तकने लगा, फिर संभलते हुए जवाब दिया, ध्रुति, ये जिंदगी है। यहाँ जरूरी नहीं कि हमेशा वही हो जो हमने सोचा हो या हम चाहते हैं। जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले, कब कौन सा रंग दिखाए, कोई नहीं जानता। मुझे ही देख लो, क्या मैंने कभी चाहा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए? पर हुई मोहब्बत। क्या तुम्हें खुद से दूर भेजना मेरी मर्जी थी? नहीं, पर फिर भी तुम्हें जाने की इजाज़त दे दी। हमारी लाइफ में कब क्या होगा ये हम डिसाइड नहीं करते। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। हम तो उनके हाथों की कठपुतली हैं, जैसे चाहें नचाएं हमें, और हम इंसान उनके फ़ैसलों को मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, जैसे मैं कुछ नहीं कर सका।
वैसे ही हो सकता है कि तुम्हारा इरादा ना हो, पर ज़िंदगी दोबारा तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा कर दे। तुम्हारे ना चाहते हुए भी हमारी दोबारा मुलाकात हो। जैसे आज मुझे तुमसे मोहब्बत है, कल को तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। आज हमारे दरमियान जो दूरियां तुम बना रही हो, कल को उन दूरियों को मिटाकर तुम खुद मेरे करीब आओ। होने को तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये उम्मीद ही है जो हम इंसानों को ज़िंदगी जीने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मैं भी इस उम्मीद की नाजुक डोर को थामकर इंतज़ार करूँगा तुम्हारा कि कभी तो वो दिन आएगा जब मेरे गुनाहों की सज़ा का अंत होगा और मुझे तुम्हारी मोहब्बत नसीब होगी। जब तक मेरे दिल में ये उम्मीद जिंदा है, मैं जिंदा हूँ, और जिस दिन मुझे ना उम्मीदी ने घेरा, शायद उस दिन मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं रह जाएगी। टू बी कंटिन्यूड।